Ah, sí, yo te escucho.
हम लोग स्थित प्रज्ञ के लक्षण देख रहे थे. स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है. कहाँ स्थित हो गई है? तो जिसकी प्रज्ञा आत्मा में स्थित हो गई है, जो ज्ञानी आदमी है, उसके लक्षण क्या हैं वो हम लोग देख रहे थे. क्यों भाई लक्षण क्यों देखना है? इसलिए देखना है कि ज्ञानी के लक्षण देख के साधक को अपने जीवन में वैसे लक्षण लाने हैं, इसकी चेष्टा करनी है. तो लक्षण पता होना चाहिए ना, एक स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड क्या है? उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको भी उस जगह पहुंचना है. तो उनके अंदर वो लक्षण जो है ना, वो सहज होते हैं, एकदम नेचुरल. उनके लिए उनको प्रयास नहीं करना पड़ता है. मगर साधक को प्रयास करके वो लक्षण जो है अपने जीवन में उतारने पड़ते हैं. तो जैसे ही भगवान ने कहा कि भाई एक ज्ञानी आदमी होता है, उसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है, अर्जुन ने सीधा जो एक अपना नया वर्ड बना लिया, स्थित प्रज्ञा. स्थित प्रज्ञा तो बोलते हैं कि भाई स्थित प्रज्ञा से का भाषा समाधिस्थ के सब. समाधिस्थ अवस्था में उसका क्या विजन रहता है, क्या अवस्था है? देखो दो ही अवस्था हो सकती है, एक समाधि अवस्था, दूसरी जागृत अवस्था. उसको हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? व्युत्थित अवस्था. विशेष रूपे न उत्थित, व्युत्थित उठा हुआ है, विशेष रूप से उठा हुआ. हम लोग भी जागते हैं, मगर हमारा जागरण जो है संसार की तरफ जागरण होता है. उसका जागरण वो आत्मा की तरफ जागा हुआ होता है. तो इसलिए व्युत्थित अवस्था में वो कहते हैं किम प्रभासित, किम आसित, ब्रजेत किम. तो चार प्रश्न हैं. तो पहले प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने देख लिया, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान. ये उसका जो है एक नंबर का लक्षण ये है, सबसे टॉप वाला. प्रजाति यदा कामान, उसके अंदर कोई कामनाएं नहीं, उसने सारी कामनाओं को खत्म कर दिया. सर्वान 100%. और आत्मना आत्मना तुष्ट. तो इसके अंदर हमको दो लक्षण मिले, पहला निष्कामता, दूसरा लक्षण आत्मा तुष्टि. ये संतोष जो है ना, ये परमानेंट संतोष है. बाकी जितने भी संतोष है ना, वो टेम्परेरी वाले हैं. भूख लगी, खाना खा लिया, संतोष हो गया, चार घंटे के बाद वो संतोष चला गया. मगर यहां पर ये जो संतोष है, ये जो तोष है, ये जो तुष्टि है, ये परमानेंट तुष्टि है. तो समाधिस्थ अवस्था की बात जो है एक श्लोक के अंदर खत्म हो गई, प्रश्न नंबर एक खत्म हो गया यहां पर। तो उसके दो लक्षण बता दिए, आत्मा संतुष्टि और दूसरा निष्कामता, उसमें कोई कामना नहीं है, काम कर्म नहीं है उसके अंदर। क्यों नहीं है? He has got the source of happiness, सुख के उसका भंडार ही है वो। हमारी कामना किस लिए होती है? हम सुखी हो जाएंगे, ये कामना खत्म होगी तो हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए जो है कामना रहती है। फिर दूसरा प्रश्न आता है किम प्रभासित, तो किम प्रभासित का जो है 56 और 57 नंबर श्लोक के अंदर उसका उत्तर दिया गया है। तो 56 में हमने देखा, देखो ये जो जितना भी यहां कुछ बताया जा रहा है ना, सब मन की दृष्टि से बताया गया, कोई बाहर नहीं है कुछ उसमें चेंज, बाहरी चेंज कुछ नहीं नजर आएगा। तो आपके अगर बगल में भी कोई स्थित प्रज्ञ बैठा होगा आपको पता नहीं लगेगा कि स्थित प्रज्ञ रवि जी बैठे हुए, नहीं पता लगेगा आपको, बाहर से वैसे ही है मगर उनकी दृष्टि बदल गई, चेंज हो गया, अंदर से सब चेंज हो जाता है। तो क्या है भाई अंदर से क्या हुआ? दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, बीत राग भय क्रोध स्थित मुच्यते। तो दुख और सुख के अंदर वो सम, देखो यहां पर क्या आती है, समता, इक्की पॉइंट माइंड, इक्की पॉइंट है, सब मन की स्थिति बताई जा रही है। मन के अंदर कामनाएं नहीं है, मन के अंदर संतोष है, मन के अंदर समता है, दुख आ जाए सुख आ जाए कोई फर्क नहीं है। किसको दुख हो रहा है? आत्मा को तो नहीं हो सकता, किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है। वो हम शरीर नहीं है, हम कौन है? हम तो आत्मा है। फिर 57 नंबर श्लोक में बताया गया, यह सर्वत्र अनिवृत स्नेह तत्त प्राप्य शुभा शुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। शुभ आ जाए अशुभ आ जाए, देखो उसके जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं, ये भी एक चीज जानने की है। ये नहीं कि ज्ञानी हो गया तो उसके जीवन में और सुख दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, सुख दुख आएंगे, मगर उसका जो विचारधारा है, उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो हमारी समझ से अलग है। उसका मन शांत रहता है, हम अशांत हो जाते हैं। हमारे लिए जब दुख आता है तो लगता है पता नहीं कितने साल तक रहेगा ये, माथा दर्द अगर 1 घंटा होता लगता है 1 साल निकल गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। और सुख अगर 1 साल रहता है तो अरे अभी तो आया था अभी चला गया, मगर उसका इक्विपॉइज्ड समता है। प्लस इसके अंदर हमने देखा असंगता है, समता और असंगता, उसका संग किसी के साथ नहीं है। फिर तीसरा प्रश्न आया किम आसीत, ये तीसरा प्रश्न हम लोग देख रहे थे, आज हमारा तीसरा प्रश्न खत्म होगा। तो तीसरे प्रश्न के अंदर जो है उत्तर 58वें श्लोक से लेकर 63वें नंबर श्लोक तक है और 61 नंबर श्लोक तक हम देख चुके हैं। तो 58 श्लोक में क्या बताया, देखो हम लोग सब अपने मन के हिसाब से चलते हैं मगर ज्ञानी जो है अपने मन के हिसाब से नहीं चलता है, ज्ञानी मन का मालिक है और हम सब अज्ञानी मन के दास हैं, मन जैसा कहेगा वैसे ही करेंगे। अज्ञानी उसका मन उसके कंट्रोल में है, कैसे है, यदा संकर्ते चायम कुर्मा अंगानी इव सर्वसह, जैसे कछुआ कुछ देखता है ना कहीं खतरे की जगह आ गई, कछुआ अपने सारे लिम्स को एक साथ, खतरा खत्म होगा फिर निकल पड़ेगा अपना, जल और स्थल में दोनों तरफ चलता है। उसी तरह ज्ञानी भी है, कभी कभी उसके पीछे बहुत लोग होते हैं और कभी कभी अकेला भी घूमता रहता है। और इसके बाद में फिर 59 श्लोक में हमने देखा विषया विनिवर्तते निरारस्य देन रसवर्जम रसोपश्य परम दृष्टा निवर्तते। कई बार होता है ना विषय नहीं है, या हमको किसी ने कह दिया कि भाई आपको जो है आपकी तबीयत खराब है, आपको कचौड़ी पकौड़ी नहीं खानी है, अभी आप जो है दवाई लो और ये परहेज रखना, डॉक्टर ऐसा बता देते हैं। अब जिसको कचौड़ी पकौड़ी पसंद है अब वो कोई लेके आया दोस्त, अरे हम तो तुम्हारे लिए लेके आए हैं, उस दुकान का है, बहुत अच्छी मिठाई है उसकी। तो कहता है अच्छा रख जाओ, अभी तो तबीयत खराब है, फ्रिज में रख दो, हमारा तबीयत ठीक होगा। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है देखो हमने संयम तो किया। कैसे संयम किया? हम जोर से कर रहे हैं संयम, भीतर में बीज है, रस है, इच्छा है, इच्छा है, खाना है ये, कोई इच्छा नहीं जाती है, रस रह जाता है। आप संयम कंट्रोल कर लो सेंस ऑब्जेक्ट से जितना भी है। अब जैसे मान लो यहां पर आपके, हमारे वहां इंडिया में कई बार ऐसा होता है, किसी किसी स्टेट में बोल देते हैं यहां पीना मना है, तो यहां पर कोई दारू वगैरह नहीं बिक्री होगी, तो जितने भी दुकानें हैं सब बंद हो गई, सब चला गया, तो लोग चोरी छिपे कुछ कुछ बेचते हैं, विषय नजर नहीं आते हैं, मगर आपके मन के अंदर वो रस है, वो इच्छा है, वो नहीं जाती है जल्दी। तो कहते कब जाएगा? रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। ये रस भी चला जाएगा, कब जाएगा? परम दृष्टवा। परम कौन है? परमात्मा है। उससे जब आपका साक्षात्कार हो जाएगा, उससे जब मुलाकात हो जाएगी, जब आपको पता लग जाएगा कि हम सच्चिदानंद हैं, हम पूर्ण हैं, हमको आनंद के लिए अब उसको हमको बाहर नहीं जाना है, तो वो जो इच्छा है अंदर में वो भी खत्म हो गई। समझ में आया आपको? जो बीज रह जाता है अंदर में कि ये इच्छा हमारी अगर मिलेगा तो हम खुशी होंगे, वो इच्छा भी चली जाती है। वो तभी जाएगी जब आपको परम दृष्टवा मिल जाएंगे, तब मिलेगी। फिर उन्होंने बताया कि यत तो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। बोलते देखो साधक, भगवान देखो ज्ञानी की बात करते हैं, बीच में साधक की भी बात कर लेते हैं। साधक की क्या बात करते हैं? यत तो अपि कौन्तेय, कोई आदमी यत्न कर रहा है इंद्रियों को संयम करने के लिए, वो यत्न कर रहा है। ये कैसा आदमी है? विपश्चितः, बोले एकदम टोटल अज्ञानी नहीं है, इसने शास्त्र वगैरह पढ़े हुए हैं, इसको धर्म अधर्म के बारे में मालूम है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको पता है, ये विपश्चित है, साधारण व्यक्ति नहीं है, मगर ज्ञानी नहीं है। विपश्चित का मतलब वो ज्ञानी नहीं है, उसने शास्त्र पढ़े हैं, उनको कुछ कुछ आइडिया है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, विपश्चित है। इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना। बोले कई बार ये लोग गिर जाते हैं, ऐसे गिर जाते हैं, विषय देखा, इंद्रियां जो है विषयों को लाती हैं, कितने विषय हैं? पांच। कितनी इंद्रियां हैं? एक एक इंद्रियां एक एक विषय को लाती है, किसको देती हैं? मन को। जैसे ही मन को दिया, आपकी वासना के अनुसार ये इंद्रियां मन को खींच के बाहर ले गई, चलो प्रदभम मना है। आपका मन कहां था? मन परमात्मा में लगाने का हम प्रयास कर रहे थे, मगर खींच के ले गई। बहुत अच्छा, हरंती प्रश्न। अब ये प्रश्न उठता है कि भई अगर विपश्चित का ये हाल है तो हम तो अज्ञानी हैं, हम तो और नीचे लेवल में हैं। अगर विपश्चित गिर सकता है जिसको धर्म अधर्म के बारे में पता है, तो मेरा क्या हाल होगा? तो हमको तो करना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, ये इस वास्ते ये श्लोक कहा गया है कि ताकि हम लोग सब सावधान हो जाएं, सावधान से इस रास्ते पर चलें, गिरने का बहुत डर है, हम ताकि ना गिरें इसलिए भगवान हमको सतर्क करते हैं, कॉशस करते हैं कि सावधान। तो हमने आपको बताया था वैशंपायन की स्टोरी बताई थी, जब वेद व्यास जी लिख रहे थे इस श्लोक के बारे में कि एक विपश्चित आदमी जो है गिर सकता है, तो वैशंपायन ने कहा नहीं गलत है ये, आप इसको संशोधन कीजिए, विपश्चित कभी नहीं गिर सकता, जिसने शास्त्र पढ़ा कैसे गिरेगा। फिर क्या हुआ उसके बाद?
वो मोहिनी बन के आ गए। you gave him the punchline.
I know.
तो वो जो है विपस वेद व्यास जी बोले अच्छा ठीक है बेटा तुम आश्रम में रहो, हम आते हैं थोड़े दिन में, चार पांच दिन में घूम के आते हैं, तुम आश्रम में रहो। अच्छा ठीक है। एक दिन बरसात हो रही थी, एक युवती आई पनाह लेने के लिए, मुझे बरंडे में सोने दो। वैशंपायन बोलता है बरंडे में क्यों, मैं बरंडे में सोऊंगा तुम कमरे में सो। कमरा दे दिया। अब रात जब हुई वैशंपायन, अच्छा वैशंपायन जो है विपश्चित है, शास्त्र पढ़ा हुआ है। रात हुई, दरवाजा खोला, खटिए तक पहुंचा, चादर उठाई, देखता हूँ वेदव्यास ही सोए। वेदव्यास ने पूछा क्या हुआ बेटे वैशंपायन विपश्चित है। ये इंद्रियों को और मन को बहुत सावधान रखना पड़ता है। एक एक महात्मा कहते हैं कि मृत्यु तक चेष्टा करते रहते हैं, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है इंद्रिय मन का, कब गिर जाएगा कोई पता नहीं है। तो इस वास्ते कहते हैं कि सावधान रहो। तो क्या करना चाहिए, यथा तस्मात तानी सर्वानी संयम्य, सर्वानी इन सारी इंद्रियों को संयम करो, कंट्रोल करो। ये तो एक पार्ट हुआ, कंट्रोल कर लिया हमने, एनर्जी सेव हो गई, क्या करें फिर। मन को तो कुछ काम देना होगा, मन को आपने संयम कर लिया, बाहर नहीं जाओ, वो तो ठीक है नहीं बाहर नहीं जाते हैं, काम बताओ क्या करें। मत पर युक्त आसीत मत पर आसीत, बैठो मन को कहां बैठाओ, मत पर भगवान में लगाओ, मैं जिसका परम हूं। देखो मन कभी आइडल नहीं रह सकता, उसको कुछ देना होगा, काम देना होगा। आपने आधा काम कर लिया, विड्रॉ कर लिया, आप सोचोगे कि हमारा हो गया, हम ज्ञानी हो गए, नहीं उससे नहीं होगा, उसको मत परा करना होगा। अब मत परा क्या, ये सुप्रीम है। जब तक आपके जीवन में हायर गोल नहीं होगा ना, तब तक आपका कंट्रोल कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, हायर को पकड़ना ही होगा। बसे ही यस्य इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बोले इस तरह से जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है। तो इसमें क्या दो चीजें हमने देखी, नंबर वन आपको संयम करना है, कैसा संयम होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, संयम आपका ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। तो हमने स्थित प्रज्ञ के कई लक्षण देखे। अब लक्षण देखने के बाद में देखो एक चीज हम लोग को समझ में आ जानी चाहिए। एक तो होता है एक्सप्रेशन, जो मन में आया कर दिया हमने, मन जैसा कहेगा वैसे करते रहेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमारी अभी की अवस्था है। मन में जैसा आता है हम कर देते हैं। एक दूसरी अवस्था है, वो क्या है कि हम संयम कर रहे हैं, मगर उस संयम कैसा है, बाहर का कंट्रोल है, पहला क्या है एक्सप्रेशन, मन में आया जो कर दिया, ये आपके स्पिरिचुअल साधना में बाधक है, ये आपको बराबर गिराता रहेगा, नीचे की तरफ ले जाएगा, नीचे की तरफ ले जाएगा मतलब बीएमआई चार्ट में ओईटी में लेता जाएगा, संसार में घूमते रहोगे आप। दूसरा क्या है, संयम है मगर बाहर के प्रेशर से है, बाहर के प्रेशर से, हम जैसे बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, जब तक क्लास 12 तक हैं हमारे घर में रहते हैं तब तक डिसिप्लिन है, इतने बजे तक घर आना है, क्या किया नहीं किया उसके ऊपर हम पूरी नजर रखते हैं। या हमको डर है पुलिस का, सोसाइटी का डर है, गवर्नमेंट के कानून का डर है, इसलिए हम वो नहीं करते, तो वो क्या हुआ, उसको सप्रेशन कहते हैं। तो पहला हुआ एक्सप्रेशन, मन में जो आया कर दिया, दूसरा हुआ सप्रेशन, मन में आया है मगर बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ अदर्स नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा क्या है, सब्लिमेशन, एक्सप्रेशन, सप्रेशन, सप्रेशन बिकॉज ऑफ आउटसाइड कंट्रोल, आदर्स। आदर्स के अंदर कौन हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, सोसाइटी के नियम हो सकते हैं, हमारे कुल की रीतियां हो सकती हैं, घर के नियम हो सकते हैं, सरकार के नियम हो सकते हैं। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन हम उसको कहते हैं जिसको हम विचार पूर्वक संयम करते हैं, विचार पूर्वक संयम। हमने विचार किया कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो संयम रहेगा, वो संयम आपका बना रहेगा। तो उसको करने के लिए कैसे करना होगा, बोले आस्ते 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 ये आपको करना है। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे जब चलते हैं ना, तो वो लोग अपना संयम करते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं, संयम नहीं पकड़ में रहा, टांगे हिल गई या ध्यान इधर उधर गया, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर चलते हैं, मगर एक दिन आता है फिर वो चलना शुरू कर देते हैं। उसी तरह हम भी अगर ऐसे ही संयम करते रहे ना, तो आस्ते 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 वो संयम पक्का हो जाएगा, वो सब्लिमेशन होगा। तो संयम अगर विवेक पूर्वक होता है, विवेक पूर्वक, तब वो संयम रहेगा, वो टिकेगा। या जैसे हम लोग ड्राइविंग सीखने जाते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे यहां तो हमने नहीं देखा, हमारे इंडिया में होता है कि आपको जो सीखने वाला है उसको स्टेयरिंग पर बैठा देते हैं। यहां आपके यहां पता नहीं कितने पैडल होते हैं, हमारे वहां तो 3 पैडल होते हैं, एक एक्सेलेटर होता है, एक क्लच होता है, एक ब्रेक होता है। उसका डुप्लीकेट बगल वाली सीट वाले में जो बैठता है ना ट्रेनर इंस्ट्रक्टर, उसके पास भी होता है 3 पैडल। तो जब आप चलाते हो पहले, तो कुछ गड़बड़ सड़बड़ होता है तो वो ट्रेनर जो है संभाल लेता है, इंस्ट्रक्टर संभाल लेता है, जहाँ ब्रेक मारना हो ब्रेक लगा देता है। उसका करते करते आप सीख गए, आपको चलाना आ गया, आप संयम में आ गए, अब आपको पिछली सीट पर बैठ के वो कंट्रोल करता है, ऐसे चलाओ, इधर करो, उधर करो, ऐसे जाना है, वैसे जाना है। तो संयम का भी इसी तरह से है। तो लोग ये सोचते हैं कि विपश्चित का संयम टूट गया तो मेरा क्या कहना है, हम किस खेत की मूली हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हमने शास्त्र भी नहीं पढ़ा अभी। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये केवल एक कौशन है, ये सतर्कता के लिए भगवान कहते हैं। अब भगवान कहते हैं, इतना कहने के उपरांत अब यह पतना विमुख पुरुष के समस्त अनर्थों का कारण बतलाया जाता है। पुरुष के, पुरुष का मतलब यहां स्त्री पकड़ लेना, आप ये नहीं सोचना कि यह पुरुष के लिए, हमारे लिए नहीं है, सबके लिए है। क्या है, पतना विमुख पुरुष के समस्त अनर्थों का कारण बतलाया जाता है। जितने भी अनर्थ होते हैं ना दुनिया में, कारण एक है, एक कारण से आदमी पतन हो जाता है। क्या कारण है, तो बहुत ही फेमस 2 श्लोक हैं, इसको हम आज डिटेल में देखेंगे और ये दोनों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। हैं
ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषूपजायते,
संगस्तेषूपजायते,
संगात् संजायते कामः,
संगात् संजायते कामः,
कामात् क्रोधो विजायते,
कामात् क्रोधो विजायते,
क्रोधात् भवति सम्मोहः,
क्रोधात् भवति सम्मोहः,
सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः,
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः,
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति,
बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
ये सारा का सारा दो श्लोक है ना, इसको लैडर ऑफ फॉल कहते हैं, कैसे आदमी गिरता है। और ये सारा का सारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के अंदर है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण कार्य के रिलेशन में है, एक का दूसरा कारण कार्य बनता रहता है, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा। अच्छा, तो पहला वर्ड है ध्याय, तो लास्ट वर्ड है प्रणश्यति। ध्याय तो मतलब ध्यान करना, अगर आप ध्यान करोगे तो प्रणश्यति, ऐसा मतलब नहीं निकालना। दो श्लोक को हम लोग एक साथ ले रहे हैं, फर्स्ट वर्ड है ध्याय तो ध्यान करना, लास्ट वर्ड है प्रणश्यति, ध्यान करने से ऐसा मतलब नहीं है। देखो कैसे गिरते हैं, अगर आप सीढ़ी के ऊपर में अगर एक गेंद को छोड़ दो, फिर उसको देखो गेंद को कैसे गिरता है, पट 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 पट, पहले एक सीढ़ी पर गिरेगा, फिर दो सीढ़ी के गैप में, फिर तीन सीढ़ी के गैप में, फिर चार सीढ़ी के गैप में, पड़ाक से गिर जाएगा। गिरना बहुत आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। आप चढ़ रहे हो, पहुंच गए वहां, मगर आपका इंद्रियां और मन आपको गिरा सकते हैं, फट से गिर जाएगा। कैसे भाई, ध्याय तो विषयान पुंस है, पहले इसका वर्ड मीनिंग देख लें, कितने स्टेप है, उनका मीनिंग क्या है। आप विषयों का चिंतन करते हो, ध्याय तो विषयान पुंस है, हे पुरुष तुम जो है विषयों का चिंतन करते हो, कंटिन्यूअस चिंतन करते हो। इस चिंतन से क्या होगा, संगस्तेषु उपजायते, उस विषयों के साथ में एक संग हो जाएगा। और जब विषयों का चिंतन करते हैं ना, तो विषयों का चिंतन करने में भी सुख मिलता है, केवल चिंतन से सुख मिलता है, उसके साथ में आ गए। उसके बाद में संगात संजायते कामा, संग हो गया उसके साथ में, सुख मिलने लगा, संगात संजायते कामा, फिर उसके साथ में कामना आ जाती है, मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। ये कैसी है, इररेजिस्टेबल डिजायर है, इसको आप रोक नहीं सकते, फिर आप करोगे ही करोगे, हमको चाहिए, उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। कामात क्रोधो भी जायते, अब कामना है, कामना के अंदर जो है कोई बाधा आ गई। देखो यहां पर भगवान बाधा की बात नहीं लिख रहे हैं, इसको हम और देखेंगे डिटेल में, क्यों बाधा की बात नहीं लिखी भगवान ने, क्यों क्रोध लिया, कामना पूर्ण होने से लोभ भी होता है, तो भगवान लोभ ले सकते थे, क्यों क्रोध लिया, देखेंगे उसको क्यों क्रोध लिया भगवान ने। तो कामना के अंदर अगर कोई बाधा आ जाए तो तुरंत आपको क्रोध आ जाएगा, तुरंत क्रोध आ जाएगा। हम लोग देख सकते हैं, बच्चे जब खेलते रहते हैं ना, खूब मन से खेलते रहते हैं खिलौने से, आप उस टाइम में खिलौना छीन लो, फिर देखो रोने लगेंगे, क्रोध आ गया। ठीक है, क्रोध आने के बाद क्या होता है, क्रोधा भवति सम्मोह, बोले सम्मोह आ गया, मोह माने मोह ने ढक लिया, किसको ढक लिया, बोले बुद्धि को आपको ढक दिया। जैसे ही मोह हो गया, आपकी बुद्धि को उसने ढक लिया। सम्मोहात स्मृति भी भ्रमा, अब मोह आने से बोले स्मृति जो है आपकी मेमोरी जो है, जो कल डाटा आपको अवेलेबल होना चाहिए जब भी दरकार है, नहीं हो रहा है, स्मृति इज नॉट अवेलेबल, मेमोरी इज नॉट अवेलेबल। अगर मेमोरी नहीं है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, और स्मृति अगर नहीं मिली तो बुद्धि कैसे होगा, बुद्धि तो डिसीजन ही लेती है अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस, क्या था आगे उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर स्मृति नहीं रही तो गड़बड़ हो जाएगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि गई तो मनुष्य का नाश हो गया। उसका ये मतलब नहीं होता है, नाश का मतलब मर गया, मरता नहीं है, क्या हुआ, जीवन नष्ट हो गया। वो फिर ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट के अंदर संसार के अंदर चला गया। बड़ी मुश्किल से संसार से हमने उल्टा चलना शुरू किया। संसार कहाँ है? संसार बाहर है, है? अब हमको शास्त्र ने कहा कि आपको तो अंदर जाना है, बाहर क्यों जा रहे हो? हमने यू टर्न ले लिया। यू टर्न करके अंदर जाना बड़ा डिफिकल्ट है, अंदर जाना बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब सारी बाहर इंद्रियां जो हैं बहिर्मुखी हैं, भगवान ने बनाई ऐसा है। कठोपनिषद में आया है कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, सारी की सारी इंद्रियां बाहर है, बाहर देखती हैं, भीतर नहीं देख सकते। क्या आप अपनी आंख से भीतर देख सकते हो क्या हो रहा अंदर? कुछ नहीं। आपको अपने हर्ट की साउंड नहीं सुनाई पड़ती है, भीतर में कितना सा गोलमाल यहां है वो सुन नहीं सकते आप, बहुत कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, क्या किया जाए? लाइट बोलते हैं आपकी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही आप नीचे गिरे, ओईटी में गए, ओईटी के बाद में आपका फिर वासना बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस तरह से जीवन नष्ट हो जाता है। देखो, ध्यायते विषयान पुंस है, पुंस माने पुरुष, ध्यायतो माने चिंतयतो, चिंतयतो मतलब कंटिन्यूअसली चिंटिंग, माने उसका ब्रूडिंग ओवर कर रहे हैं, खाली चिंता उसी का विषय के बारे में सोच रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं। देखो, खाली विषयों को एक बार देखने से ही आपको कामना नहीं आती है। विषयों को देखना पाप नहीं है। अगर विषयों को देखने से ही अगर गड़बड़ हो जाता है तो हमको आंख बंद करके रहनी होगी 24 घंटा, नहीं देखेंगे, किसी को नहीं देखेंगे, मॉल में जाएंगे अंधे बंधे, कुछ नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। मगर आपने मॉल में जाके एक चीज देखी, अब उसका चिंतन शुरू कर दिया, चिंतन शुरू कर दिया तो संग आ जाएगा। हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था ब्रह्मचारी कोर्स में, देखो हमारे ब्रह्मचारी कोर्स में बड़ा मजा होता था। क्या मजा होता था? पवई के अंदर में हम लोग को बाहर नहीं जाने देते थे, जो खाना बनाया वही खाना होगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, बाहर से नहीं आ सकता, ठीक है। मगर कभी कभी जो है ना, वो लोग भाड़ा लेते थे मिशन को, शादी के लिए, शादी के लिए भाड़ा लेते थे। तो हम लोग सोचते, अरे आज तो अच्छा खाना मिलेगा, आज आइसक्रीम आएगी। अब वो कंडीशन एक रहती थी कि आप बराती खाने के पहले हमारे ब्रह्मचारी खाएंगे। देखो, बहुत पुण्य का काम होता है, जितने ब्रह्मचारी हैं वो सब ब्रह्म में चरण करते हैं, इसलिए वो सब ब्राह्मण है। किसी शादी के अंदर अगर 100 ब्राह्मण एक साथ बैठ के खा लें तो आप सोचो कितना बड़ा पुण्य है वो। तो वो पहले कंडीशन लगाते थे कि पहले ब्रह्मचारी खाएगा तब तुम्हारी बारात खाएगी, बारात सेकंड। मगर कुछ कैटरर बदमाश होते थे, वो सोचते थे इनको क्यों बेसी अच्छा खिलाए। अब देखो, वो बनाएगा पनीर बटर मसाला तो क्या करता था, केवल उसको ग्रेवी देता था, पनीर नहीं देता था। अच्छा, आइसक्रीम होती थी तो हम लोग 1, 2, 3 खाते थे, फिर पता नहीं फिर नेक्स्ट शादी कब होगी क्या। तो गुरुदेव कहते थे कि देखो, आइसक्रीम खाना खराब नहीं है, मगर खाने के बाद में ये मेडिटेट मत करो कि यार वो आइसक्रीम बड़ी अच्छी थी, वो बटर स्कॉच लेके आया था, उस शादी में खाई थी। बोले उसके ऊपर जो चिंतन करना है वो खराब है, डोंट ब्रूड ओवर दैट, कंटिन्यूअसली चिंतन मत करो उसका। तो ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यायतो में सतत चिंतन। अच्छा, नेचर ऑफ विषय क्या, विषय क्या क्या होते हैं? हाँ, देखो यहां पर आप लोग इतने ज्ञानी हो गए हो, विषयान शब्दादि विषय विशेषान, शंकराचार्य जी लिखते हैं, आपने जो कहा वही लिख दिया, शब्द आदि। देखो, जब महात्मा लोग लिखते हैं ना, शब्द आदि का मतलब आपको समझ देना होगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ऑब्जेक्ट हो गए। तो विषय 5 हैं, ज्ञान इंद्रियां 5 हैं, उनका आप सतत चिंतन करते हो, सतत चिंतन। ब्रूडिंग ओवर, कंटिन्यूअसली थिंकिंग, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप सतत चिंतन नहीं करो फिर नहीं गड़बड़ होता है. ध्याय तो विषयान पुंस है, हम अपने बच्चों का कौन सा चिंतन करते हैं, सतत चिंतन करते हैं. इसलिए संगस्ते सुपजायते, उनके साथ में अटैचमेंट हो जाता है. शास्त्र क्या बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं मत परे भगवान का चिंतन करो, फिर क्या होगा, संग किसके साथ होगा. सिंपल है ना, बच्चों के साथ में सतत चिंतन करके आप बच्चों से जुड़ गए कि नहीं. अब भगवान का अगर सतत चिंतन करोगे तो किससे जुड़ोगे, सीधा सिंपल सिंपल एकदम है एक साइंस. मगर हम तो चिंतन नहीं करते हैं भगवान का, मत पर तो हो नहीं होगा. तो नेचर ऑफ विषय क्या है, विषण बनती सबंधनती इति विषय, विषण बनती सब बगनती, मानते हैं विषण बनती. विषय वर्ड का रूट है सी, सी धातु से वो बनता है. सी धातु का मतलब होता है कि आपको वो पकड़ लेता है, बांध लेता है, सिनोती. तो ये आप विषयों का अगर जब चिंतन करते हैं तो क्या होगा, विषय जीव का मन को घेर लेते हैं, वो घेर लेते हैं, विषय मन का घेराव कर लेते हैं. जैसे फैक्ट्री में घेराव कर लेते हैं ना, मैनेजर का डायरेक्टर का, वो लोग घेराव कर लेते हैं. आपको यहाँ नहीं मालूम है, इंडिया में बहुत होता है. हमारे कलकत्ते में CPIM गवर्नमेंट जब थी बहुत घेराव करते थे वो लोग, इंडस्ट्रीज को घेराव कर लो, बाहर नहीं जाने देंगे. घेराव. और अभी एक लेटेस्ट एक केस आया मारुति कंपनी का, उसकी जजमेंट 2-3 दिन आगे आई है. उन्होंने क्या किया, लेबर लोग ने एक मैनेजर को घेराव कर लिया, घेराव करके उसको बंद करके उसको उसके कमरे से निकलने नहीं दिया. अब वो बाथरूम नहीं जाने पाए, उसके बाद में उस कमरे में आग लगा दी, उसको बाहर नहीं निकलने दिया, वो जल के मर गया अंदर में. अब केस हुआ, उसका डिसीजन अभी 2-3 दिन पहले आया, 38 वर्करों को उन्होंने कन्विक्ट कर दिया. इसको बोलते हैं घेराव. उसी तरह से ये विषय क्या करते हैं, मन को घेराव कर लिया. चिंतन करोगे, मन को उसने घेराव कर लिया. हम क्या करते हैं फिर, विषयों पर सुख का ध्यास करते हैं कि ये विषय हमको सुख देंगे. उसको हम लोग कहते हैं शोभन अध्यास, शोभन अध्यास. अभी देखो विषय हमने किया, खरीदा नहीं है, केवल अभी चिंतन चल रहा है. उसी में सुख मिल रहा है, उसने घेराव कर लिया. इसको हम संग कहते हैं. नेचर ऑफ संग क्या है, संग किसको कहते हैं, वो कहते हैं ये मुझे पसंद है. आपने चिंतन किया, आप चिंतन करके आपने ठीक किया, ये मुझे पसंद है, ये मुझे अब चाहिए, ये मिलेगा तो मेरी जिंदगी पूर्ण है, नहीं तो हमारी जिंदगी अपूर्ण है, कैसे जिंदा रहेंगे उसके बिना, अपूर्ण है. बहुत अच्छा. अब रस बुद्धि आई, रस बुद्धि. अभी मालिक नहीं बने हैं उस वस्तु के, अभी मालिक नहीं बने हैं, मगर रस आ गया उसके अंदर में, अटैचमेंट हो गया. ये संग क्या करता है, ये संग प्रॉम्प्ट करता है कि कामना, ये चाहिए, अब मुझे अब ये चाहिए. कामना कैसी कामना है, इररेजिस्टेबल, यू कांट स्टॉप नाउ, चाहिए ही चाहिए मेरे को, इसके बिना मेरी जिंदगी बेकार है. तो ये कामना क्या करती है, नेचर ऑफ कामना क्या है, नेचर ऑफ विषय हमने देखा है वो बांधता है मन को, जैसे बांध लेता है. नेचर ऑफ कामना क्या है, ये मन को अशांत कर देता है, आपको बैठे नहीं रहने देगा, आपको अशांत कर देगा. जैसे मान लो आप डिस्कोर्स में भी बैठे हुए हो, पता नहीं कोई कामना एक आ जाए, बैठे तो आप यहां फिजिकली बैठे रहोगे मगर मन आपका अशांत है. और हम लोग को कई बार नजर आता है, आंखों से पता लग जाता है कि ये यहां है कि नहीं, और हम छोड़ते नहीं है. हम अपनी क्लास में हम सामने बैठते हैं, व्यासपीठ पर जाके नहीं बैठते, वहां से तो नजर नहीं आएगा हमको, और हम देखते रहते हैं कौन कहाँ, हमको पता लग जाता है वो अभी नहीं है यहाँ पर। बहुत से लोगों को नजर आता है यहाँ नहीं है। बहुत अच्छा, तो ठीक है। तो कामना के अंदर जैसे ही बाधा आ गई क्रोध आ जाता है, कामना अगर पूर्ण हो गई तो लोभ आ जाएगा। देखो क्रोध और लोभ दोनों मन को अशांत करते हैं। लोभ भी मन को अशांत करेगा कि और चाहिए, और क्रोध आ जाता है कि अरे ये क्या हुआ, हमको मिला नहीं है। क्रोध लोभ दोनों ही मन को अशांत कर देते हैं। अच्छा, भगवान केवल क्रोध की बात क्यों कर रहे हैं? तो बोलते हैं कामनाएं तो अनेक हैं मगर विषय कम है। देखो ये साइंस है पीछे में, सभी मल्टी मिलियनियर बिलियनियर ट्रिलियनियर बनना चाहते हैं मगर उतने रुपए ही नहीं है, तो विषय कम है ना। कामनाएं डिजायर ज्यादा है, डिमांड इज मोर सप्लाई इज लेस, तो नेचुरली बाधा तो आएगी, किसी ना किसी को तो बाधा आएगी ना। 100 आदमी खरीददार हो और गाड़ी अगर 10 हो तो 90 आदमी को तो बाधा आई ना। 90 आदमी चाह रहे थे कि भाई हमको सबको गाड़ी चाहिए, जैसे ही नहीं मिली बस क्रोध आ गया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने क्रोध को लिया, क्योंकि विषय कम है कामनाएं ज्यादा हैं, तो क्रोध आएगा ही आएगा। और काम का बेटा कौन है? बोले काम का बेटा क्रोध है। ये तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है ना। जैसे ही चिंतन किया संग आ गया, संग के कारण कामना आ गई, कामना के कारण क्रोध आ गया, इंटर रिलेटेड है, एक के बाद एक आता जाएगा। क्रोध है तो क्रोध का नाम क्या है? कामानुज, एक क्रोध का नाम है काम का अनुज, कामानुज। अच्छा, क्रोध की कई डिग्रीज भी होती हैं। अब डिग्री आपको तो मालूम है कितनी डिग्री होती है, सबको अनुभूति है क्रोध की। यहां पर तो आप लोग सब सांस से बैठे रहते हो, घर में क्या चलता है, कैसे कैसे क्रोध आता है, क्रोध की क्या डिग्री है। तो बोले पहले क्रोध माइंड में आएगा, सब माइंड में आएगा, उसके बाद में मुंह से निकलता है, है? मुंह से निकल के बाद फिर हाथ में आ जाता है, कई डिग्री हाथ में आ जाता है। अच्छा, क्रोध पापात्मक है, हर सिन के पीछे ये क्रोध है, हर पाप के पीछे क्रोध आता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, नहीं पहले क्रोध आया, क्रोध के बाद में क्रोध भवती सम्मोह, क्रोध के बाद में सम्मोह आएगा। सम्मोह क्या है? माइंड डिस्टर्ब हो गया, माइंड कवर हो गया, मुंह कवर कर लिया उसको, डेल्यूटर को कवर कर लेता है। अब भले बुजरे का विचार नहीं है, ढक गया आपका मन। हम क्रोधी की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, उसका विवेक चला गया, उसका विवेक खत्म हो गया। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं क्रोध से सम्मोह अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य विषय अविवेक उत्पन्न होता है। मेरा क्या कर्तव्य है क्या नहीं है, उसका अविवेक, अविवेक, अविवेक नहीं कर पाते हैं, क्या करना चाहिए उस टाइम में नहीं करना चाहिए, उसका कोई विवेक नहीं है। क्योंकि क्रोधी मनुष्य मोहित होकर गुरु को बड़े को वो गाली दे दिया करता है। शंकराचार्य जी लिख रहे हैं आपको, आप जब क्रोधित हो ना उस समय देखो क्या आप करते हो, अब बाद में उसको जब क्रोध शांत हो जाए फिर आपको पता भी लगता है कि हमने कितना गलत काम किया, अपने गुरुजन को, गुरु को, अपने माता पिता को, बड़ों को हमने जो है जो बात नहीं कहनी चाहिए वो हम कह डालते हैं। क्यों कह डालते हैं? क्योंकि बुद्धि ढक गई, उस टाइम बुद्धि नहीं अवेलेबल है कि ये मेरे माता पिता हैं हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, कि ये मेरे गुरु हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए हमें, कि ये हमारे बड़े हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि नहीं रहती है, ढक जाती है। ये सब हमारी अनुभूति है, हम सब की अनुभूति है, जो मन में आया बोलते गए पटापट पटपट, कोई उसके अंदर फिर चेक नहीं है, कंट्रोल नहीं है। बच्चे भी कई बार माता पिता पर क्रोध करते हैं, माता पिता को घर से निकाल देते हैं, ऐसा भी होता है। निकलो हमारे घर से, अब क्रोधित हो गए, फिर बाद में जब भूल समझते हैं तो फिर उनको बुला के लाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, सब होता है हमारे समाज में। सम्मोहत स्मृति विमुना, असम्मोहत काल में मेमोरी नहीं है, मेमोरी नहीं। देखो हर डिसीजन जो है मेमोरी पर निर्भर करता है, मेमोरी नहीं है। क्या मेमोरी नहीं है? कह रही ये तो मेरे माता पिता हैं, ये मेमोरी अब नहीं रही वहां पर क्रोध के टाइम में, ये हमारे गुरु हैं, ये मेमोरी नहीं रहती है, मेमोरी नो मोर अवेलेबल। उल्टा सीधा जो मन में आया कर दिया। तो को बुद्धि जब विचार करती है ना उसको तथ्य चाहिए। हम लोगों ने कई बार देखा है कि अगर हमको एक अगर मच्छर पांव में काटता है, हम देखते नहीं कि मच्छर काटता है, मगर वो हमारा सेंसेशन जो है वो ये इंद्रिय स्किन जो है त्वचा ये इंफॉर्मेशन पहुंचा देती है मन के पास में कि मच्छर वहां कोई काटा है। वो संवेदना जाती है, जब संवेदना वहां जाती है तो मन के पास गए, मन जो है रिसीविंग क्लर्क है, उसने क्लर्क ने ले लिया, बुद्धि को भेज देता है, बुद्धि बोलता है ठीक है, बुद्धि जो है रेफर करती है मेमोरी को, मेमोरी बताता है आगे बहुत बार काटा है, ये मच्छर है, वो मेमोरी चाहिए, नई मेमोरी से बहुत गड़बड़ हो जाता है, बहुत गड़बड़ होगा। फिर जो है बुद्धि कहती है मच्छर है, उसको फिर डिसीजन देती है कि उसको मारो, फाइल मन के पास आती है, मन हाथ को इंस्ट्रक्ट करता है, कितनी देर होती है, एक सेकंड नहीं लगता इसको, इतना चक्कर घूम के आता है। मगर विदाउट स्मृति विदाउट मेमोरी नहीं होगा, अगर डाटा ही नहीं अवेलेबल हो तो कैसे होगा डिसीजन, डिसीजन हम नहीं ले सकते। तो सम्मोह काल के अंदर में हमारा स्मृति नहीं रहती है, तो कैसे निर्णय लें? निर्णय लेना बहुत मुश्किल है। देखो बच्चे जो है ना वो आग के पास जाते हैं, कभी उन्होंने कभी छुआ नहीं है आग को, देखा नहीं है, आग बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, तो बच्चा जो है पहले वो आग की तरफ जाता है, एक बार छुएगा जब जल जाता है ना, जलन हो जाती है, उसके बाद वो आपका गुरु है, गुरु है, वो आपको जैसे ही आग देखेगा एक बार वो उसकी मेमोरी में हो गया। अब वो जिंदगी में आग को नहीं छुएगा, अगर वही मेमोरी ना मिले आपको तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो आप लोग सब कोई बैठे हो, अगर मेमोरी नहीं होती तो हमको हर रोज धृतराष्ट्र वाच वहां से शुरू करना पड़ता, वहां से शुरू करना पड़ता ना, तो हालांकि हम रोज ही प्रजाहाति यदा कामान से शुरू करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं मुझे ये मालूम है कि घर में जाके ये पुस्तक नहीं खोलते, कोई पुस्तक नहीं खोलता है। हमारे ठाकुर रामकृष्ण बोलते थे कि देखो डॉक्टर तीन किस्म के होते हैं, तीन किस्म में कौन से डॉक्टर हैं, बोलते एक तो आप डॉक्टर के पास में गए, आपकी नब्ज देखा, दवाई लिख दिया, छोड़ दिया, जा, उसके बाद फिर आपकी खबर नहीं लेता है, कैसे हो, दवाई खाई कि नहीं खाई, नहीं लेगा कोई बात। उसको जो है ठाकुर बोलते थे कि ये अधम डॉक्टर है। मध्यम डॉक्टर के कौन सा है, वो फोन करके पूछेगा आप कैसे हो, दवाई रात को खाई थी, आज कैसी तबीयत है आपकी, मध्यम है। और उत्तम डॉक्टर कौन है, बोले जो आपके छाती पर बैठ के कड़वी दवाई पिला के जाए, पियो, तो हमारा हाल कुछ वैसे ही है, हमें मालूम है, तो हम बार बार उसको रिवाइज करते हैं, किसी तरीके से आपके मन के अंदर मेमोरी में ये बैठ जाए। अच्छा स्मृति के मोह से स्मृति विभ्रम होता है, अर्थात शास्त्र और आचार्य द्वारा सुने हुए उपदेश के संस्कारों से जो स्मृति उत्पन्न होती है उसके प्रकट होने का निमित्त प्राप्त होने पर वह प्रकट नहीं होती। देखो, आप शास्त्र और आचार्य जो बोलते जा रहे हैं ना, आपके मेमोरी के अंदर सब स्टोर होता रहता है। अगर ये स्टोर किया हुआ डाटा राइट टाइम पर अगर अवेलेबल न हो तो किस काम का डाटा ये? ये हमारे गुरुजन हैं, ये डाटा अगर हमको क्रोध के टाइम में अवेलेबल ना हो तो बेकार है ये डाटा। तो इस तरीके से बोलते हैं कि आपकी स्मृति ढक जाती है। ये स्मृति बनती कैसे है? बोले ड्रॉप बाय ड्रॉप, जन्म से बनती रहती है। ये एक दिन की स्मृति नहीं है। बच्चे को आग का अनुभव जो है बहुत छोटी उम्र में हो गया, वो सारी जिंदगी फिर वो अनुभव रहता है, फिर वो फू फू करता रहेगा बहुत। फिर स्मृति भंसात बुद्धि नाश है, स्मृति भंसात के बाद में बुद्धि नाश आ गई। कार्य अकार्य विषय विवेक अयोग्यता अंतकरणस्य बुद्धि नाश उच्यते। कार्य अकार्य स्मृति भंसात बुद्धि नाश है, कार्य अकार्य विषय विवेक क्या करना चाहिए, कार्य अकार्य क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जो विवेक की अयोग्यता है, विवेक इंटेलेक्ट अब वो डिसीजन नहीं ले पाता, अयोग्य हो गया, उसकी एबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि स्मृति नो मोर अवेलेबल नहीं है। नेचर ऑफ बुद्धि क्या है, बुद्धि का नेचर क्या है? निश्चय आत्मिका बुद्धि, हम लोगों ने तत्वबोध में देखा है, निश्चय आत्मिका डिसीजन लेती है बुद्धि। अब बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश हो गई, आपका नाश हो गया, आप डिसीजन नहीं ले पाए। जब तक आप बुद्धि है तब तक आप मनुष्य है, अगर बुद्धि से काम नहीं हो पा रहा है तो आप क्या बन गए? पशु हो गए। पशु कैसे चलता है? बोले इंस्टिंक्ट पर चलता है। आप उससे भी अधम हो गए, आप कई बार राक्षस हो जाते हो। राक्षस हो जाते हो मतलब असुर तो केवल जो है अपने सेल्फिश कामों को फुलफिल करने में ही लगा रहता है। राक्षस वो है कि जो अपने सेल्फिश डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए दूसरों को मारने को तैयार है। क्रोध के अंदर क्या होता है? हम तो सब करने को तैयार हैं, कई बार आप राक्षस हो जाते हो। ठीक है, अगर मान लो बुद्धि आपकी चली गई, बुद्धि नॉट अवेलेबल, इफ हेड ऑफिस इज नॉट अवेलेबल, क्या बचा? अगर हेड ही नहीं है तो वो तो टेल बच गया, और क्या बचा है? टेल से क्या होगा? तो बुद्धि ना से प्रणश्यति। तो बोलते हैं आपको जो है कंट्रोल कहां करना है? बोले वेरी बिगनिंग करना है, ध्यायतो विश्वान पुंस, वहां चेक करना है। गुरुदेव कहते थे ना कि आइसक्रीम खाओ मगर डोंट मेडिटेट ऑन दैट, खाने को मना नहीं करते हैं, सतत चिंतन उसका नहीं करो। विषय भोगों के लिए ही है हमारे लिए, पांच विषय जो हैं पांच ज्ञान इंद्रियों के भोग के लिए हैं, मगर मत पर को नहीं भूलो। मत पर मतलब परमात्मा को नहीं भूलो, अपने लक्ष्य को नहीं भूलो। लक्ष्य को रखते हुए तुम आइसक्रीम खा के निकल पड़ो आगे, अगर आइसक्रीम पर ही मेडिटेट करते रहोगे तो क्या होगा? लक्ष्य भूल गए, आपको तो वहां पहुंचना था, आप पहुंचोगे नहीं। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि एक बार सिगरेट पीने से क्या होगा, एक बार भांग खा लो, एक बार चरस खा लो, एक बार कुछ नहीं होगा, शुरू हो जाता वहां से, फिर बाद में हम कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत अच्छा, बाल कांड के अंदर में एक स्टोरी आती है नारद जी की, रामायण में बाल कांड में नारद जी की स्टोरी आप लोगों को मालूम है सर। नारद जी जो हैं काफी संयमी हैं, मन का कंट्रोल करके हिमालय से सब साधना करके उतरे हैं। उनके मन में आया कि मैंने काम जय कर लिया है, मेरे में काम नहीं है। तो बोलते अच्छा तुम्हारे में काम नहीं है, विश्व मोहिनी बन के आए, किसी राजा की बेटी का स्वयंवर हो रहा था, अब उन्होंने कन्या देख ली, कन्या देख के बोलते हम तो शादी करेंगे, हो गया उनकी साधना खत्म। देखो कैसे गिरता आदमी, नारद जैसे लोग हम शादी करेंगे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे कि अपना जैसा रूप जो है सुंदर रूप मेरे को दे दो, हमको शादी में जाना है ताकि वरमाला मेरे को, आगे स्वयंवर होता हुआ करता था ना, ऐसा नहीं था कि आप लड़का लड़की देख के अपना पसंद कर लो शादी कर लो, ऐसा नहीं था, स्वयंवर होता था। तो स्वयंवर के अंदर में जो है बोले कि हमारा बना दो। अब देखो भगवान ने कहा देखो ये मेरा भक्त है, अब ये शादी के चक्कर में पढ़ना चाहता है, उसके बाद में क्या होगा ओईटी में घुस जाएगा ये, तो इसको बचाना है। तो उन्होंने उसका मुंह कर दिया बंदर का, बैठा दिया वहां पर, बंदर का बैठा दिया। अब वो जो है विश्वमोहिनी कन्या है, तब कैसे बंदर को अपनाए, हो ही नहीं सकता। अब सब जो है बाकी सब लोग जो है देख देख के नारद जी को हंसे, सब हंस रहे हैं, नारद जी क्या हो गया सब हंस रहे हैं हमको देख देख के। तो जब बाहर स्वयंवर सभा से बाहर आए तो पानी के अंदर उन्होंने अपना मुंह देखा, तो ये सब कुछ हंस रहे हैं मेरे को देख के क्या हो रहा है। उन्होंने देखा होते तो हमारा मुंह नहीं तो बंदर की तरह है, बहुत गुस्सा आया, चला गया फिर वो भगवान के पास में आके उनको श्राप दे दिया कि तुमको भी एक बार बंदर की हेल्प लेनी होगी, बिना बंदर की हेल्प से काम नहीं बनेगा। देखो भगवान ने किंतु नारद को श्राप देने के बाद में भी नष्ट नहीं किया उसको, कुछ नहीं किया, श्राप एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? ना मे भक्त प्रनिष्यति, मेरा भक्त का नाश हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं होगा। देखो सीता जी में रामायण में भी आता है, सीता जी का देखो कंचन मृग देखा, अब कंचन मृग देखा था मन अब उछलने लगा, मृग उछले इधर मन उछले, हमको चाहिए वो। लक्ष्मण जी कहे मत लो, ऐसा मत करो, राम जी गए हुए हैं, आप राम जी को भेज रहे हो। फिर बोले जाओ तुम भी जाओ, उन्होंने आवाज वगैरह सुनी, पूरी स्टोरी हम नहीं बताएंगे आपको, आवाज सुनी कि जो है बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी बोला तुम जाओ, लक्ष्मण बोले मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। अब उनको उल्टा सीधा कह दिया, उनको अब वो ख्याल ही नहीं रहा कि लक्ष्मण कौन है, उल्टा सीधा कह दिया। देखो सब लीला थी, क्रोध आया उनको भी लक्ष्मण के ऊपर में, मगर भगवान ने सीता का नाश नहीं किया। ना मे भक्त प्रनिष्यति, भक्त का कभी नाश नहीं होता है। बहुत को तो हमको क्या करना है, तो हमको जैसे ही विषयों के ऊपर में चिंतन ज्यादा आए हमको जो है उसी टाइम में कंट्रोल करना है, उसी टाइम में। वहां अगर कंट्रोल बंद हुआ, खत्म नहीं हुआ, नहीं कर पाए, फिर गिरना शुरू कर देंगे, पट 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 नीचे गए। तो आपको वहां सोचना है। तो यहां कामान की बात ना जो आई है ना, प्रजाति यदा कामान, जो ज्ञानी है, यहां कामना तीसरे स्टेप में आई है, विषय संग फिर कामना तीसरा स्टेप था, मगर ज्ञानी के पास में जो है उसका कंट्रोल है। प्रजाति यदा था, उसने कामनाओं को कंट्रोल किया हुआ है। हमें जो है कैसे करना है, हमको बताते हैं कि और आगे से करना है। शुरू कहां से हुआ यह कामना, विषयों के चिंतन से शुरू हुआ। तो जैसे ही चिंतन में शुरू हो तब आपकी बुद्धि सतर्क होनी चाहिए, तब जो है इतनी बार जो रिपीट किया है वो आपको स्मृति अवेलेबल होनी चाहिए, इतनी बार वो कह रहे हैं यहां रुको, इस जगह पर रुकना है, नहीं तो चिंतन करते रहोगे, संग होगा, संग के बाद कामना आएगी, कामना के बाद क्रोध आएगा, सम्मोह आएगा, गिरते जाओगे, बुद्धि नाश हो जाएगी।
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।